哎呀，कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा तक प्रवचन हो चुका था, फिर भी दो शब्दों में कल जहां विराम दिया था वहां से आगे एक बार फिर स्मृति उसकी कर लेते हैं। अक्षर ब्रह्म का मतलब शुद्ध जीवात्मा, और उसका स्वभाव है भगवान से प्रेम करना और सेवा करना, और उसको विश्राम मिलता है जब वो भगवान के घर वापस पहुंचता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे घर एक बार आता है उसको कभी वापस फिर संसार दुखमय में जाना नहीं पड़ता है। तो वो भगवान को कैसे प्राप्त करे, तो योगियों के लिए तो दो गतियां बताई हैं, एक देव मार्ग से जाते हैं और दूसरे पितृयान से जाते हैं। जो देव मार्ग से जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, और जो पितृ मार्ग से जाते हैं वो चंद्र लोक तक स्वर्ग लोकों का सुख भोग के फिर वापस आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों को इन दोनों मार्गों को जानने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सर्वेषु कालेषु, आप हर समय योग युक्तो भव अर्जुन, हमेशा नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहो, नित्य निरंतर सदा मेरी भक्ति में लगे रहो, मुझसे जुड़े रहो। तो इसके ऊपर विचार करके सत्संग को विराम दिया था। सदा भगवान से जुड़े रहने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? सदा भगवान से जुड़े रहने के लिए सबसे उत्तम साधन है भगवान का सत्संग, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों के संग में। बस सबसे उत्तम साधन ये है, भगवत कथा, भगवान के भक्तों का संग, ये निरंतर मिलता रहेगा तो भगवान से हमारा संपर्क सेवा का बना रहेगा। और फिर भगवान ने कह दिया कि वेद से, तप से, यज्ञ से, दान से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे अधिक तो मेरे इस प्रेम भक्ति से हो जाता है। जो इसको जान लेता है वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। यहां आठवां अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचा। नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग, गुह्यतम ज्ञान। इस अध्याय को विशेष अध्याय माना जाता है। 18 अध्याय में से नवा अध्याय बीच का अध्याय है। और इसके अंदर भगवान की भक्ति की महिमा और भक्ति से, प्रेम से भगवान को वश में किया जा सकता है, अजीत भगवान को भक्ति से जीता जा सकता है। और भक्ति इतनी शक्तिशाली है, पापी दुराचारी करे तो भी भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नवा अध्याय है। आइए इसके पहले श्लोक का पाठ करते हैं। इसमें अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा है, भगवान अपनी इच्छा से, हृदय से, जो सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान के विषय को रखा था उसको पुनः शुरू करते हैं। और आठवें अध्याय का अंतिम श्लोक में इदम विदत्वा, इसको जो जानता है, इदम विदत्वा वहां शब्द है, तो उसी को सामने रख के ये श्लोक बोल रहे हैं। आइए इस श्लोक को पाठ करें। श्री भगवान वाच इदम तुते गुह्यत्मम प्रवक्षामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इदम तुते गुह्यत्मम, जिसको जानने से मुझसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, मेरे धाम में आ जाओगे, वो सबसे गुह्यतमम। एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम। तो दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में जो ज्ञान है भगवद गीता के, जिसमें आत्मा शरीर को अलग बताया गया और फिर दोनों से अलग भगवान के लिए काम करने के लिए कर्म योग बताया गया, इसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। ये गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। सातवें और आठवें अध्याय में भगवान का शरण लेना, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की महिमा का वर्णन सुनना, ये है गुह्यतर ज्ञान, क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित होता है। केवल मैं आत्मा हूं ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जैसे कोई नौजवान बच्ची ये समझ ले कि मैं अब लड़की हूं, बच्ची छोटी नहीं हूं, तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके जीवन का सुख तब शुरू होगा जब उसको प्रेम करने वाला पति मिलेगा और उसकी सेवा में उसका जीवन लग जाएगा, तब सुखी होगी। तो केवल अपने आप को आत्मा जानने तक में सुख नहीं है, लेकिन जब भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए, सेवा में लग जाए, तो आनंद है। तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान वो गुह्य ज्ञान है, और भगवान से संबंध हो जाए, संबंध का मतलब है जैसे पता लग गया कि ये हमारा, इससे हमारा संबंध होने वाला है तो खुशी होती है, लेकिन जब तक संबंध होता नहीं है, सेवा होती नहीं है, प्रेम का आदान प्रदान होता नहीं है, तब तक आनंद नहीं आता। तो सातवां और आठवां अध्याय जो है वो भगवान से संबंध स्थापित करने की प्रेरणा है। उसमें भगवान अपना नाम लेके कहते हैं मेरा शरण लो, मेरी भक्ति करो। तो ये गुह्यतर ज्ञान है। और नवे अध्याय में भगवान से प्रेम करने की प्रक्रिया, जिसमें आनंद का अनुभव होता है, उसका भगवान के उपदेश भगवद गीता में बहुत हैं। एक ये सूत्र है हमारा, उपदेश भगवान के अनेक हैं लेकिन आदेश एक है। उपदेश अनेक हैं, आदेश एक है। उपदेश है कर्म योग करो, दान करो, पुण्य करो, ये तो भक्ति करो, ये बहुत सारे उपदेश हैं। आदेश एक है, भाव मद भक्तो मेरा भक्त बन, ये आदेश है। उपदेश अनेक है, आदेश एक है, एक बात। दूसरी बात, जब भी भगवान ने गुह्यतम ज्ञान कहा है, गुह्यतम का मतलब है बेस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो जब भी भगवान ने कहा है अपनी केवला अनन्य शुद्ध भक्ति के लिए कहा है, और किसी भी अन्य ज्ञान योग या कर्म मार्ग के लिए गुह्यतम शब्द नहीं कहा है भगवद गीता में। ये जो विशेष शब्द है परिपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, महान, रहस्यमय, ये जब भी भगवान ने कहा है उस समय व्यक्तिगत भगवान से प्रेम मई भक्ति करने का प्रसंग है, तभी बोला। तो ये बात ध्यान में रखना, उपदेश अनेक हैं लेकिन आदेश एक है। उपदेश समझना चाहिए, आदेश का पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन आपको मैं रहस्यमय उत्तमतम गुह्यतमम, गुह्य कहते हैं रहस्यमय को, वो ज्ञान प्रवक्षामी प्रवचन कर रहा हूं, प्रकृष्टेण रूपे न वक्ष्यामि, आपको समझा रहा हूं क्या विशेषता है आपके हृदय में। मुझे ऐसा रहस्य वाला सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताने का मन में आया, कौन सा गुण है मेरा, अथवा ऐसा कौन है जिसको भगवान ऐसा ज्ञान बताते हैं, ये कौन सा गुण है जो भगवान के ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको पात्र बनाता है, योग्यता देता है, वो क्या गुण है। तो भगवान कहते हैं अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द का अर्थ है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, जो भगवान से जलता नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा मैं आपको अर्जुन रहस्य का ज्ञान देने जा रहा हूं, सब मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हई तद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। तो भक्त भगवान की महिमा गा के आनंदित होता है, और ईर्ष्यालु भगवान की महिमा से जलता है, ईर्ष्या करता है, भगवान क्यों सब भोग रहे हैं, हमको भी भोगना चाहिए। ये जो ईर्ष्या है असल में, ये भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। भक्ति और ईर्ष्या एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। भक्ति में भगवान की महिमा में आनंद आता है और ईर्ष्या में जलन होती। अनुसूय का मतलब भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं है। सूय कहते हैं गुण में दोष देखना और अनुसूय कहते हैं जिसमें दोष दृष्टि नहीं हो। एक माता का नाम है अनुसूया, अत्रि की पति का नाम है अनुसूया, जो किसी में दोष नहीं देखती है, महापतवता नारी है। तो अनुसूया दोष दृष्टि नहीं है, हो जिसमें भगवान में दोष नहीं है। भगवान ने कहा मेरे इस ज्ञान को वही समझ सकते हैं अनुसूयंते, जिन्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। प्रायः भगवत गीता के ऊपर टीका लिखने वाले भी भगवान श्री कृष्ण को गीता से निकाल के और उसकी जगह पे कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी कह देते हैं, भगवान को भगा देते हैं बीच में से। बात भगवत गीता की करते हैं क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है, गीता के नाम से उनका लोग सुनने आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण है ही नहीं उसमें। वो कहते कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसका चिंतन करना है और वो तुम ही हो, बस कथा पूरी हो गई। वो हम ही हैं तो फिर काय के लिए तुमसे सुनने आए हैं महाराज, हम ही हैं तो फिर तुमसे क्यों सुन रहे हैं। प्रायः जब तक भोग करने की भावना हमारी बनी रही है तब तक थोड़ा सा भगवान से ईर्ष्या बनी रहती है। जब तक सेवा का भाव नहीं जीवन में आता है तब तक ईर्ष्या जाती नहीं है। दो ही भावनाएं हैं, एक भोग की भावना और एक सेवा की भावना, enjoying mentality and service attitude, भोग की भावना और सेवा की याचना। जीवन में जब तक भोग की भावना है तब तक भगवान से ईर्ष्या चलती रहेगी, भगवान क्यों भोगता है, हम क्यों नहीं है। यही तो कारण है तब इस दुनिया में पड़े हुए। भगवान आप क्यों संसार चलाते हैं, इसके स्वामी हैं, हमारी इच्छा है हम भी इसके स्वामी बन जाएं। भगवान हंसता है, बेटा तुमसे चलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं, क्यों नहीं चलेगा, हम भी चलाएंगे। तो उदाहरण देते हैं कि पिताजी हाईवे के ऊपर गाड़ी चला के जा रहे हैं, 5 वर्ष का छोटा बेटा पास में बैठा है, जिद करता है मैं गाड़ी चलाऊंगा बाबा। तो कोई भी समझदार पिता बच्चे को 5 साल के को हाईवे के ऊपर बड़े रोड के ऊपर गाड़ी चलाने तो नहीं देगा ना, लेकिन बच्चे से प्रेम करता है तो बच्चा कहता है, जिद करता है मुझे गाड़ी चलाने दो, तो बाप को क्या करना चाहिए। बेटा ठहरो, तुम्हारी गाड़ी का व्यवस्था करता हूं, तुमको देता हूं चलाने के लिए, थोड़ी देर रुको। आगे कोई शहर आ गया, गाड़ी को रोक दी और खिलौने के दुकान से एक गाड़ी खिलौना लेके दे दी, बेटा तुम इस गाड़ी को चलाओ, ये तेरी गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी है। तो बच्चा कहता हाँ हाँ अब मेरी गाड़ी हो गई। ऐसे भगवान ने कहा, भगवान दुनिया का सृष्टि करके चला रहा है, हमने बोला नहीं हमको भी भाई, हमको भी सृष्टि करनी है, हमको भी चलाना है। अरे बेटा नहीं चलेगा, नहीं 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 हमको बाबा दे। बोला ठीक है जा, तेरे को एक घर देता हूँ चला के दिखा, एक दुकान देता हूँ चला के दिखा, एक पत्नी देख जाऊं कुछ पैदा करके दिखा, जा तू घर चला के दिखा, वहां दुकान मकान चला के दिखा, फैक्ट्री चला के दिखा। ओ 10-12 साल तो बड़ा शौक होता है चलाएंगे, फिर दो बार रोज खींच खींच के निकाल, अरे नहीं चलती है, बहुत परेशानी है, ये नया टैक्स आ गया, ये जीपी क्या आ गया, ये पीपी आ गया, परेशानी चालू हो गई। ये हमने कहा हम चलाएंगे, भगवान ने कहा चलाओ, तेरा खिलौना है वो हमसे चलता नहीं है। भगवान कहते जब थक जाओ तब हाथ ऊपर करना कि बाबा हम वापस आते हैं, हमसे नहीं चलती है तो आ जाना वापस अपने घर में, तुम्हारे को मना नहीं है। लेकिन नहीं, हमारा अभी भी इच्छा है, अभी नहीं है चलती है तो क्या बात है, आगे चल जाएगी। अ अभी नहीं, बाद में चल जाएगी, बाद में चल जाएगी, उसके बाद में चल जाएगी, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में चल जाएगी। कितने जन्म ऐसे व्यर्थ चले गए, कुछ नहीं चलता है। ये सब आंखों के सामने देखे, कितने प्रेम से मां बच्चे को पालती, दूध पिलाती, पढ़ाती लिखाती, बड़ा होने के बाद मां को कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे कुछ नहीं आता है क्या, तेरे को पैदा करना आ गया और क्या चाहिए, तेरे को बोलना सिखाना आ गया, नहीं नहीं अब तुम अभी वो सारी उम्र सेवा करती, आखिर में उसको देखने वाला कोई नहीं। ऐसे हमने भगवान को भी कर दिया, वो हमारा पिता है, जैसे आजकल हमने घर से माता पिता निकाल दिया, ऐसे भगवान को भी निकाल दिया कि जाओ तुम्हारे बगैर हमारा काम चल जाएगा। तो कैसे दुनिया में ऐसे काम चलेगा। तो अनुसूय वे बहुत मुख्य, भगवान से प्रेम करने का, भगवान की सेवा में शामिल होने के लिए, भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए मुख्य पहला गुण है भगवान के प्रति श्रद्धा हो, ईर्ष्या नहीं हो, और दूसरा भगवान से सुनने के लिए तैयार हो। प्रवक्षामि का मतलब मैं प्रवचन करता हूं, इसका मतलब तुम सुनो। तो भगवान से सुनना या भगवान की वाणी, भगवत गीता को भगवान के भक्तों से सुनना, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोगों का यहां बहुत बड़ा उत्साह है, प्रतिदिन शाम को आप आते हैं, घंटा डेढ़ बैठते हैं, भगवत गीता में रुचि है। ये श्रवण असल में गुह्यतम ज्ञान क्या है, भक्ति है। और भक्ति क्या है, बोला नौ अंग वाली भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा सुनना भक्ति का पहला अंग है। और सुनने के में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है और भगवान हमारा है, हमारा पिता है, हमारा माता है, हमारा सर्वस्व है। ऐसे व्यक्तिगत भगवान के साथ भाव उत्पन्न करना चाहिए, मेरा स्वामी है। और भगवान के भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, तो सुनना और उसमें भी श्रद्धा। सुनने के तीन अंग है, सुनना, समझना और करना। इसको वेद में कहते हैं श्रवण मनन निध्यासन। सुनना फिर समझना, और समझने के बाद करना। अब आप सुन रहे हैं और भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, बुद्धि दी है, तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फल सुनने का तब मिलेगा जब आप अभ्यास करोगे। और वो अभ्यास क्या है, भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम अपने आप स्वयं रोज नेम से जपने का नेम बनाएंगे कुछ समय निकाल कर, तो हमारा श्रवण परिपूर्ण हुआ। कथा सुनी, कथा में ये सुना कि कल युग में भगवान का नाम ही आधार है, और ये भगवान का महामंत्र ब्रह्मा जी ने नारद के माध्यम से कलिसंतरण उपनिषद में बिना नेम के, बिना टेम के, बिना जाति पाति के भेद के, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबको जपने का अधिकार दे दिया है। उठते बैठते चलते खाते पीते कभी भी चाहो जप सकते, इतना बड़ा उदारता भगवान ने की है। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापित नयमित सुमरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममपि दुर्दैवमी दृशम यहा जनिनानुराग। कितने दयालु हैं भगवान, आपने अपने अनेक नाम रख दिए, सब नामों में अपनी निज शक्ति भर दी, और उसके लिए जपने का कोई नेम टेम भी नहीं रखा है। फिर भी कितना हमारा दुर्भाग्य है कि उस नाम जपने में हमारी रुचि नहीं हो रही है। नाम जपने में रुचि कब होगी? जब भक्तों का संग होगा, भक्तों की कृपा होगी तो भगवान के नाम जपने में रुचि होगी, और भगवान का नाम जप के हृदय शुद्ध होगा तो भगवान की कथा में रुचि होगी। गीता भागवत में रुचि तब पैदा होगी जब हृदय शुद्ध होगा, और हृदय कब शुद्ध होगा? जब जप करके चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के दर्पण को धो के साफ करना पड़ेगा, झाड़ू निकालना पड़ेगा। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, प्रतिदिन घर में जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे दिल में झाड़ू लगाना पड़ेगा जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या भरी पड़ी है, इसका कैसे झाड़ू लगाए? उस उठते ही बिस्तर से गोविंद के गुण गाया कर। ये झाड़ू कैसे लगेगा? रोज प्रतिदिन हरि के गुण गाया कर। देखो ना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे, गोविंद गोपाल गाते चलो, हरि नाम का खजाना लुटाते चलो। स्वयं भगवान का नाम गाओ और सबको सुनाते चलो। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, ये इंद्रियां भागनी नहीं चाहिए, संयम के कोड़े लगे। जीवन संयम वाला होना चाहिए, संयम वाला जीवन चाहिए। सबसे ज्यादा संयम कब बिगड़ता है? जब आदमी की भोजन के अलावा कोई और आदत जीवन में पड़ गई तो फिर संयम बिगड़ गया। एक बड़े से बड़ा नशा है, रोज का खाने के लिए अन्न चाहिए, उसके बगैर शरीर नहीं चलता है। वो तो ठीक है, अन्न ब्रह्म है कलयुग में, और ये अन्नमय कोष बनता ही उनसे है, लेकिन इसके अलावा एक भी आदत ज्यादा बढ़ा दी तो बहुत मुश्किल है संयम करना, बहुत मुश्किल है संयम करना। एक आदत भी बढ़ा दी, मानो एक चाय पीने, चाय आई कहां से? ये तो हम नहीं कहते हैं, अंग्रेज ने जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर ये टोपी पहना ले गया। उनका देश इतना ठंडा है कि सूरज निकलता ही नहीं है, और वो काली चाय पीते हैं, और हमारे सारे दूध के ऊपर पानी फेर के चले गए। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, और घर में सुबह पहले होता था ओम जय चाय, ओम जय, अब कहते ओम जय चाय की प्याली, सुबह सुबह उठ के कप लेके, और घंटी उसी की बजती है, भगवान के कीर्तन की नहीं बजती, खड़ताल नहीं बजती है, कप और प्लेट बजता है। ये एक बीमारी ऐसी है, मैं एक का उदाहरण देता हूं, और बड़े बड़े भारी आ गए हैं तो फिर संयम नहीं रह गया, इसके बगैर उठा नहीं जाता है, आलस होता है, तो तमोगुण आ गया समझ लो, और तमोगुण से भगवान को भजा नहीं जा सकता। संयम बहुत जरूरी है इंद्रियों का, कम से कम में गुजारा हो जाए उसमें काम चलाना चाहिए। जीवन होना चाहिए बिल्कुल सादा, और विचार होने चाहिए ऊंचे, लाभ क्या होगा? सादा जीवन होगा, जरूरतें कम होगी, तो ये भौतिक माया हमको पकड़ेगी नहीं, कहां से पकड़ेगी, है ही कुछ नहीं। एक व्यक्ति गया ज्योतिषी के पास, कहा मेरा देखो ज्योतिष में कौन सा ग्रह खराब है। उसने कहा तुम्हारा शनि की दशा बहुत 7.5 वर्ष की चल रही है। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला 1100 की पूजा कराओ, शांति कराओ। बोला 1100 तो है नहीं। बोला तो 501 की तो करा सकते हो। बोला इतने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी महाराज, तो 251 की पूजा तो करा लो। महाराज है नहीं। 151 में होगा? नहीं है। 101 की पूजा की सामग्री ला सकते हो? नहीं। 51 की पूजा करा लो भाई। महाराज व्यवस्था नहीं हो सकती। 21 है? नहीं। 11 नहीं है। बोला जा तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा, है क्या तेरे पास? अरे कुछ होगा तो बिगाड़ेगा, तेरा है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा। तो जो इतना सादा जीवन है उसका क्या बिगाड़ेगा शनि और क्या बिगाड़ेगा मंगल। तो वो ये हुआ सादे जीवन से भगवान की माया शक्ति से उसके मोह से बच जाते हैं। और ऊंच विचार से क्या होता है, न परत्रमस्ति धनंजय, भगवान कहते मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तो ऊपर से ध्यान है भगवान का। जब भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान की अंतरंग शक्ति वो योग माया राधा रानी के रूप में हलादिनी शक्ति हमारा पोषण करके हमारे को आनंद का अनुभव करा देगी। तो सादे जीवन से माया से बचा जाता है और ऊंच विचारों से भगवान की शक्ति राधा रानी की कृपा से भगवान के चरणों का अमृत पान होता है। इसलिए सादा जीवन जरूरी है। अब लोगों का जीवन बहुत ऊंचा है लेकिन विचार बहुत नीचे है, उल्टा हो गया है। ऊंचा जीवन नीच विचार, एक दूसरे से जलन के विचार, एक दूसरे को गिराने के विचार, ये संसार के अंदर बहुत उल्टी गंगा चल रही है। सो भगवान कहते हैं अर्जुन आप सुनो और ईर्ष्या रहत हो, और सुनने का आपको कितने तुम भाग्यशाली हो, इस युद्ध भूमि में शंख बज चुके हैं, सबका अस्त्र शस्त्र तैयार है, और तुम इसके बीच में ज्ञान गीता का मुझसे सुन रहे हो एकाग्र चित्त से, तेरे सुनने को शाबाश है, तुम सुनने में तुम्हारी रुचि है और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान विज्ञान सहितम, तुम्हारे को केवल ज्ञान किताब का नहीं दूंगा, अनुभव उसके साथ दूंगा, अनुभव सहित ज्ञान दूंगा। अनुभव कहते हैं विज्ञान को, विज्ञान कहते हैं साइंस को, और साइंस का मतलब है जिस चीज को आप करो तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, साइंस का मतलब सामने देख सकते हो। तो मैं आपको ज्ञान के साथ विज्ञान दूंगा, और विज्ञान का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने अन्य स्थानों में भागवत में एक जगह लिखा है, विज्ञान है भक्ति का साधन, क्योंकि उससे फल मिलता है, उससे साक्षात परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब भगवान कहते यज्ञात्वा, उसको जानने के बाद, किसको जानने के बाद, इस गुह्यतम ज्ञान को, और विज्ञान सहित इस ज्ञान को। श्री प्रभुपाद जी आरंभिक 67-8 में, 66 में तो इसका स्थापना किया, कुछ पढ़े लिखे शिष्य बने, उसमें एक डॉक्टर मणिपुर का था, डॉक्टर टीडी सिंह, उसका प्रभुपाद ने दीक्षा का नाम दिया था स्वरूप दामोदर महाराज, और एक दो और थे, उनको कहा आप ऐसा करो, आप विज्ञान से साइंस से लोगों को कृष्ण भावना भावित करो, आप उसकी पुस्तकें छापो सब विज्ञान विज्ञान सहित, उसका नाम ही रखो सब विज्ञान साइंस, और उसको जानने से क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, बाकी जितने शक शुभा रह गए हैं, संशय रहे हैं, उससे मुक्त हो जाओगे, और कुछ जानने के लिए रह नहीं जाएगा। यज्ञात्वा भगवान को जाना तो कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान के विज्ञान को जाना तो फिर कोई शक शुभा नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। बोला शक कैसा होता है, शुभा कैसा होता है, बोला शैतान जैसा होता है, डाउट्स आर लाइक डीमंस, ये जो संशय होते हैं ये बहुत बड़े भारी उपद्रव मना मचाने वाले हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद भगवान दूसरे श्लोक में उस ज्ञान की बात करते हैं, आइए इस श्लोक का पाठ कीजिए, यह है मुख्य श्लोक जिसमें जिस श्लोक के आधार पर इस अध्याय का नाम है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मयम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान कहते हैं ये राज विद्या है, जितनी विद्याएं हैं उनका राजा है। तो हमारे पास 6 दर्शन हैं, गौतम का, कणाद का, पतंजलि का, जैमिनी का, शांडल्य का, इन ऋषियों के 6 दर्शन है, 6 दर्शन कहते हैं। उसमें व्यास देव का वेदांत सूत्र है, पतंजलि का योग है, कपिल का सांख्या दर्शन है। इन सारी विद्याओं का ये राजा है जो मैं देने जा रहा हूं आपको अर्जुन। अभी विद्याओं का राजा है, और इसका दूसरा अर्थ है राज ऋषि इस विद्या को समझते थे। ये राजाओं की विद्या है, क्योंकि राजा जब समझते थे तो प्रजा को नेम में चलाते थे। ये भगवान ने 4th अध्याय में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियों विदुः। इसको राज ऋषियों ने समझा, ये राज ऋषियों की विद्या है। आपको आश्चर्य लगेगा, भगवान ने इस भगवत गीता का ज्ञान किसी सन्यासी को नहीं बुला के दिया, किसी ब्राह्मण को भी नहीं दिया। एक क्षत्रिय राजपुत्र अर्जुन को दे रहे हैं, राज ऋषि है, इसलिए सन्यासी को नहीं दिया गीता का ज्ञान भगवान ने, ब्राह्मण को भी नहीं दिया। एक कर्मठ क्षत्रिय को, राज ऋषि को दिया है। सो ये राजाओं की विद्या है, अथवा सारा विद्वाओं का राजा है। राज गुह्यम, जो सबसे रहस्य में जीवन में कोई चीज है उसमें ये सबसे दुर्लभ गुप्त है। तो सबसे गुह्य क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसको आप दिल में छुपा के रखते हो, किसी को बताते नहीं हो, क्या है ऐसा जिसको कहा जाए गुह्य। वो है भगवत प्रेम। राज गुह्य है, गुह्यतम क्या है, प्यार प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के कारण अर्जुन को सतहा क्यों भूल गए ठकुराई। भगवान ये भूल गया मैं त्रिलोकी नाथ हूं और अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ दी। क्यों? क्योंकि अर्जुन प्रेम करता था भगवान से। प्रेम के बस सबरी के बेर खाए, जूठे खा लिए रघुराई। ये प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये प्रेम जो है ये कहीं बाहर से लाना नहीं है, सबके हृदय में भगवान ने जन्म से भर के रखा है। हमारा सबके हृदय में ये प्रेम पड़ा है, सबके हृदय लाल मूरख खोजत जा खोज, सबके हृदय लाल मूरख खोजत खोज जानत नहीं, ताते भया कंगाल। ये प्रेम सबके हृदय में भगवान ने परिपूर्ण रूप से तैयार रखा है, लेकिन हम इसको खोल नहीं समझते हैं, इसलिए दुनिया में भिखारी बने कंगाल बने पड़े हैं। ये सबके हृदय में भगवान ने रख दिया है प्रेम। यही प्रेम जैसे दूध में नींबू पड़ जाए, नींबू के दूध में पड़ने से दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है, ऐसे भगवान का प्रेम माया के प्रभाव से बिगड़ के काम का रूप धारण कर लिया है दुनिया में। भगवत प्रेम ही काम के रूप में विकृत हुआ है, बिगड़ा है, और ये काम है जो कभी पूरा नहीं होता। और जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और ये काम और क्रोध ये जीव के बड़े शत्रु है, हमारे बड़े शत्रु है। और ये काम का पेट कभी नहीं भरता है। महा अश्नो महा पापमा, अश्नो कहते हैं खाने को, अश्नायों का मतलब खाना, महा अश्नो का मतलब पेटू, जिसका कभी पेट नहीं भरता है। प्रेम भी एक बार ऐसा अगर हो जाए तो जितना प्रेम करते हैं प्रेम बढ़ता है लेकिन पेट नहीं भरता। प्रेम की भी यही दशा है, प्रेम की भी यही दशा है। जिससे प्रेम करते हैं प्रेम बढ़ता जाता है लेकिन तृप्ति नहीं होती। राधे श्याम, हरे कृष्ण। प्रेम कितना भी करो प्रेम बढ़ता जाएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सनत्तम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। राधे श्याम। ये देखो बाबा आया, इसका मतलब प्रेम सबको सीखना चाहिए। ये शंख बजा के सत्य बोल गया, सत्य है सत्य है सत्य है। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणा, राधे श्याम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो गुह्यतम ज्ञान है भगवत प्रेम, और ये प्रेम इस संसार में आके विकृत हो गया है काम के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला लिखने वाले चैतन्य चरितमृत कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम में और काम में इतना अंतर है जितना सोने और लोहे में। देखते एक जैसे दिखते हैं। प्रेम का अर्थ है जिससे आप प्रेम करते हो उसको सुख पहुंचाना, आपके जीवन का मतलब है। जैसे मां बच्चे से प्रेम करती है तो रात जागेगी, भूखी रहेगी, लेकिन बच्चे को सुख से सो जाए, सुख से खाए, इसको कहते हैं प्रेम। जिससे प्रेम करते हो उसको सुखी देखना जीवन का लक्ष्य हो, इसको प्रेम कहते हैं। और काम किसको कहते हैं? इससे मुझे क्या सुख मिलेगा, इससे मुझे क्या सुख मिलेगा, ये काम हो गया। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और वहां लिखा है, अपनी इंद्रिय की तृप्ति करना का नाम है काम, और कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने का नाम है प्रेम। गोपियां क्या करती थी? कृष्ण को आनंद देने के लिए श्रृंगार करती थी, अपने को नहीं सुंदर देखती हूं इसके लिए नहीं करती थी, कृष्ण को अच्छा लगेगा इसलिए श्रृंगार करती थी। तो कृष्ण की प्रीति के लिए, भगवान को, कृष्ण को आनंद देने के लिए भोग बनाओ, श्रृंगार करो, भगवान देखेगा प्रसन्न हो जाए, ये है प्रेम। मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी करूंगा उसका नाम धरे काम। तो गुह्यतम ज्ञान क्या है? प्रेम। और पड़ा भी सबके पले में है लेकिन इस वक्त विकृत हो गया है, बिगड़ गया है। दुनिया में कामनाओं के प्रभाव से, माया के प्रलोभन के कारण वो प्रेम बिगड़ गया है, और इसलिए कोई सुखी नहीं है संसार में। क्योंकि जहां भी काम होगा वहां हमेशा क्रोध अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पूरा तो होना ही नहीं है काम कभी। जहां काम है वहां विश्राम नहीं है, वहां भागा दौड़ी बनी रहेगी, और जहां प्रेम है वहां राम है, वहां आनंद है। राम का अर्थ है आनंद। तो भगवत प्रेम ही गुह्यतम ज्ञान है। कैसा है? पवित्रम। ये बहुत पवित्र है। पवित्र के परिभाषा में लिखा है, हमारा इस वक्त जन्म हुआ है, कुछ हमारे कर्म पक्के हैं इसलिए जन्म हुआ ना। कोई खास माता पिता मिला, कोई खास शहर मिला, कोई बेटा मिला, कोई भाई मिला, कोई पति मिला, ये हमारी च्वाइस से तो नहीं मिला है ना। ये हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण मिला है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। हमारे जो हम कर्म कई जन्मों से करते आ रहे हैं, उनमें से जो पक के फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उसी के कारण हमारे को कहीं जन्म मिलता है, कोई माता पिता मिलते हैं, कोई संबंधी मिलते हैं, कोई दुख देने वाले मिलते हैं, कोई सुख देने वाले मिलते हैं। लेकिन कर्म हमने इतने किए हैं, उसमें से कुछ तो अभी संचित रूप में पड़े हैं, बीज ही नहीं बनाए, कुछ बीज रूप में है, कुछ फल उन्मुख है, थोड़े दिनों के बाद फल देने वाले हैं। तो ये हम कर्मों की पोटड़ी अपने साथ लाए हैं। जैसे प्रेम की पोटड़ी भगवान ने हमारे हृदय में रखी है ना, भर के थैली, ऐसे कर्मों का थैला हम कई जन्मों का साथ उठा के घूम रहे हैं। तो पवित्र कितना है ये भक्ति वाला रास्ता, कि जितने भी बीज रूप में कर्म है वो सब भुन जाएंगे। जो बीज भुन जाएगा फिर खेत में डालो, उसमें से कोई फल नहीं, उसमें से कोई अंकुरित होगा ही नहीं। जो भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता, तला हुआ बीज, भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। बीज फल, कूट फल, फल उन्मुख फल, सारे ही कर्मों के फल भगवान की प्रेमी मई भक्ति भस्म करके खत्म कर देती है। ये है पवित्र करती है। किसको? जन्म जन्मांतर के कोटि जन्मों के कर्मों के फल को भस्म कर देती है, इसलिए ये पवित्र। भगवान को किसी ने कहा आप माखन चोर हो, बोला केवल माखन चोर नहीं हूं, अपने भक्तों के अनंत जन्मों के पाप कर्मों को भी चुरा लेता हूं। माखन चोर नहीं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण के नवनीत माखन की चोरी करता है भक्तों का। फिर कहते हैं अनंत जन्म पाप कर्म चोरम, भक्तों के कई जन्मों के कर्मों के पाप की भी चोरी कर लेता हूं, उनका भी हृदय पवित्र और शुद्ध कर देता हूं। अब एक बात, पवित्र का अर्थ क्या है? पवित्र का मतलब किस चीज को साफ करना। तो साफ हमसे होती तो कब की हम कर लेते, हमसे नहीं होता है तभी तो दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। इसके लिए भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, शुण्वताम श्रद्धया नित्यम, जो श्रद्धा से भगवान की कथा नित्य सुनता है, ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, और उसको समझ के जीवन में अपनाने की चेष्टा करता है, कालेन अति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, भगवान विशते हृदय, भगवान आके हृदय में बैठ जाएगा। बोला कहां से आएगा? प्रवेश्च करण रंध्राणाम, कान के द्वारा आएगा। तो कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं हृदय सरोरोहम, जैसे आपका हृदय कमल के ऊपर भाव सरोरोहम, आपने भगवान को अपना बेटा माना तो छोटा सा बाल गोपाल बन के आ जाएगा, आपने सखा माना तो आपका सखा बन के आ जाएगा, आपने अपना प्रेमी माना तो प्रेमी बन के आ जाएगा, और आपने अपना स्वामी माना तो स्वामी बन के आ जाएगा, करेगा क्या? धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा से कानू के द्वारा भगनों भक्तों के हृदय में प्रवेश करके उनके जन्म जन्मांतर के कर्मों के मैल को धो के साफ कर देता है। इसलिए भगवान को माता कहते हैं, क्योंकि माता बालक को धो के साफ करती है, बालक अपने आप अपने को साफ नहीं कर सकता है, माँ ही माँ बालक को साफ करती है। तो भगवान का मातृ का भाव भक्त के हृदय को अनंत कोटि जन्मों के पापों से धो के साफ कर देती है, पवित्र है ये भक्ति का साधन, इतना पवित्र है। आगे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इतना पवित्र है। नारद एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था जो किसी ब्राह्मण के घर में काम करती थी, नौकरानी का बेटा था, लेकिन वो भक्ति वेदांत साधुओं के सेवा और उसका प्रसाद उचिष्ट क्या मिला, उसका जीवन पवित्र हो गया और नारद के पद को दूसरे जन्म में प्राप्त किया। अब जाहे तब जाहे, जब चाहे वैकुंठ जा सकता है, इस ब्रह्मांड में बगैर रोक टोक के घूम सकता है और गोलोक धाम तक भी जाए तो रोक उसको नहीं है। तो ये इतना पवित्र करने वाला है। वैसे प्रारब्ध कर्म बदलना बहुत मुश्किल है, किसी का नहीं बदलता, लेकिन भक्ति में ये शक्ति है। सुधामा प्रारब्ध के कारण ब्राह्मण गरीब था। सुधामा विप्र कहते हैं वेदज्ञ को, वो ब्राह्मण जो वेद को जानता है, जिसकी इंद्रियां संयम में है, जिसका मन शांत है, वेदज्ञ है। लेकिन प्रहलाद ऐसा था कि ब्राह्मण था, गरीब था, लेकिन भगवान के पास जाने से भगवान ने उनके प्रारब्ध को बदल के और द्वारका जैसा महल बना दिया। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई अपराधी अगर जज के सामने जाए तो उसके अपराध का 1 साल का जेल भी दे सकता है और 100 रुपया दंड भी देके कहे कि इसको मुक्त करो, ये जज के हाथ में है। ऐसे भगवान जो शरणागत होते हैं उनके प्रारब्ध भी बदल देते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम के कीर्तन में ताली बजाता है ना तो ये हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, ये हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं भगवान के नाम के। और जो भगवान के सामने माथा टेकता है, प्रणामो दुख शमनम भजा हरिम परम, हरि भगवान हरि, उसके सामने सर नीचे झुकाने से धरती के ऊपर, माथे के ऊपर जो विधाता ने उल्टी लकीरें डाली है ना, जैसे आपके ऑफिसों में ठप्पे पड़े होते हैं ना, जो स्टैंप उसमें उल्टा लिखा होता है और जब वो नीचे कागज पे लगता है ना तब सीधा हो जाता है, तो जो उल्टी लकीरें माथे की हैं भगवान के सामने प्रणाम करने से सब सीधी हो जाती है। तो भागवत की पूर्ण आहुति के श्लोक में 2 बातें कही है, यहां भगवत गीता में उन दोनों बातों की बात है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अगर सब मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो सारे पाप नाश हो जाएंगे। बोला पाप का फल दुख होता है, पाप करोगे तो दुख भोगेंगे, पाप का फल दुख होता है, ताप होता है, तो ताप कैसे जाएगा, दुख कैसे जाएगा? प्रणामो दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करने से, हरि को प्रणाम करने से हरि दुख हर लेता है। इसलिए भगवान का एक नाम है हरि, जो अपने भक्तों का दुख हर लेता है और फिर प्रेम देके मन हर लेता है, इसलिए भगवान का नाम है मनोहर। भगवान मन को हर लेता है, लेकिन मन को हरने से पहले भक्तों के अनंत जन्मों के पापों की राशि को और उसके फल दुख को हर लेता है। इसलिए पवित्र कौन करता है? बोले भगवान की भक्ति भगवान को प्रेरित करती है भक्त के हृदय को पवित्र करने के लिए। इदम उत्तमम उत्तम कहते, तम कहते हैं अंधकार को, तम का मतलब अंधकार, ये संसार अंधकारमय है। ओम अज्ञान तिमरंधस्य, मैं तो अज्ञानता के अंधकार में इस दुनिया में पैदा हुआ। ये दुनिया कैसी है, सूर्य नहीं उगे तो अंधकार, चंद्रमा नहीं उगे तो अंधेरी रात, बिजली नहीं है तो अंधेरा, स्वभाव से ये दुनिया अंधेरी है। यहां तो प्रकाश के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, और भगवान का धाम कैसा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां न सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, न चंद्रमा के शीतलता की जरूरत है, न अग्नि न बिजली की जरूरत है, वो अपने आप स्वयं प्रकाशमान है। तो उत्तम का मतलब अपने आप प्रकाशमान। ये जो भगवान का गुह्यतम ज्ञान है, ये आपको अपने आप जीवन में अंदर से प्रकाशित करेगा, अंदर का अंधकार नाश हो जाएगा। इसको ऋषभ कहते हैं। ऋषभ का मतलब जिस जो अपने ज्ञान से प्रकाशित हो, किसी बाहर से प्रकाश होने के लिए कुछ साधन की जरूरत नहीं है। तो ये भगवान की भक्ति उत्तम है, अज्ञानता के अंधकार को नाश करने वाली है। पाप क्यों करता है आदमी, अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण। ना तदे कश्चित पापम न चैव सुकृति विभु, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान तेन मोहयन्ति जन्तवः। भगवान किसी के पाप पुण्य के जिम्मेवार नहीं है। ये जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। जीव तो सच्चित आनंद है, चित्त का मतलब है ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, आत्मा तो ज्ञानमय है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा आ गया है। तेन मोहयन्ति जन्तवः, उसके कारण ये जंतु हो गया है। जंतु का मतलब पशु हो गया है, जानवर हो गया है। अज्ञानता के कारण जानवर के काम में ही खुश है। आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, बस खाने पीने में लगा है, सोने का बंदोबस्त कर रहा है, बाल बच्चे पैदा करके पालना है, अपनी सुरक्षा के लिए ताला लेना है कि सिपाही संतरी रखना है, बस इसी काम में लगा हुआ है। ये तो पशु की वृत्तियां हैं। धर्म अधिको विशेष, अगर जीवन में धर्म, ये धर्मयम आगे आ रहा है, धर्मयम ये है धर्म, भागवत धर्म, धर्म वो है जो भगवान ने दिया है। धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो दिया उसको धर्म कहते हैं, और उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। और जिस धर्म के ऊपर चलने का अधिकार सबको है, काले को है, गोरे को है, देशी को है, विदेशी को है, माता को है, भाई को है, बच्चे को है, बाबा को है, पक्षी को है, पशु को भी है। इतनी गैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाया जो गोकुल में, वो गैया उनका क्या महिमा होगी। पूतना दूध पिलाने का तो ढोंग करके विष पिलाने आई थी, उसको माँ का स्थान दिया, तो उन गायों का क्या कहना जो प्रेम से दूध पिलाती थी, उन माइयों का क्या कहना जो माताएं प्रेम से गो भगवान को दूध पिलाती थी। तो ये उत्तमम के बाद है प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष अवगमन का अर्थ होता है हाथ के कंगन को आईने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने पड़ा है, ऐसा नहीं है मरने के बाद ये भगवान की भक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी, नहीं, जीते जी। प्रत्यक्ष अवगम इन भक्तों के जीवन में, इनसे पूछ लो, ये नौजवान जो आपके साथ पढ़े लिखे बैठे हैं, जैसे भगवान की भक्ति शुरू कर दी, बहुत सी बुराइयां जो आदतों के कारण जीवन में आ गई थी छोड़ के चली गई। भगवान की भक्ति और भगवान का नाम है सूर्य के समान, और माया है अंधकार। सूर्य उगा तो फिर अंधकार नहीं रहेगा, और भगवान का नाम और भक्ति शुरू हो गई तो अपने आप अंधकार चला जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब जीते जी अभ्यास शुरू करो, और इसको कहते हैं अपने हाथ की तलाई के ऊपर आपको वैकुंठ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मिलेगा, यहां अभी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है इस भक्ति का। और नारद उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, और बहुत सारे भक्त विश्व भर में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने भक्ति से प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिख रहा है। तो भक्ति का प्रमाण कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, जीते जी उसका आनंद मिलेगा। धर्मयम, यही धर्म है, एक ही धर्म है। भागवत में उसको सवई पुंछाम परो धर्मो, परो धर्म एक है। परो धर्म का मतलब एक ही धर्म, जो परम धर्म है। परम का मतलब परम धर्म को क्या है, यतो भक्ति अथोक्षजे, वो जो भगवान इंद्रियों से परे हैं उसकी भक्ति ही एक धर्म है। इसको कहते हैं प्रेम ही धर्म है, भक्ति की परिभाषा है प्रेम, और प्रेम का परिचय है सेवा। तो ये भक्त भागवत धर्म है, ये प्रेम को प्रकट करने वाला धर्म है, और ये नवदा भक्ति वाला धर्म है जो दैत्य पुत्र महाजन प्रहलाद ने दिया है। और क्या दुख वाला है, क्या भूख काटनी पड़ेगी, क्या सांस बंद करके रहना पड़ेगा, क्या घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा? नहीं, सुसुखम, सुख नहीं सुसुखम, सुंदर नहीं सुसुंदर। सुसुखम का मतलब नाचते गाते खाते पीते आनंद में भगवान को पा सकते हो, इतना आसान है। अभी आरती में आप थोड़ी देर देखो, सब कैसे आनंद में नृत्य करते हैं। ये सुसुखम हो गया कि नहीं हो गया? ये भक्ति का साधन इतना सुसुखम है कि बच्चा भी आनंद लेगा। सुसुखम अति सुखदायी कार्य है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ये तो मलाई जैसा मीठा है, अमृतमय साधन है। सुसुखम करने में कर्तम, करने में बहुत सुखदायी है, तो करने के बाद खत्म हो जाएगा। अव्ययम, इसका फल अविनाशी है। मानो आपने 50% अभी इस भक्ति का साधन किया, किसी कारण से शरीर छूट गया, तो 50% आपके साथ जाएगा, दूसरे जन्म में 51% से आपका काम शुरू होगा, नाश नहीं होगा। आप पढ़े लिखे भले यहां से PhD MBA BBA कुछ भी करके जाओ, मरने के साथ सब पन्ने यहीं रह जाएंगे, किसी काम के नहीं है। दोबारा जन्म लेंगे फिर क ख घ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भक्ति की हुई वापस तत्काल जहां छोड़ी है वहां से शुरू करेंगे। इसलिए ये बच्चे देखो छोटी उम्र में भक्ति में आए, क्योंकि पहले इन्होंने 50% की हुई थी। जैसे इनको थोड़ा सा भक्ति का रस लगा तो अपने आप आ गए। और कितने ऐसे हैं कि मंदिर में तो 30 साल से जा रहे हैं लेकिन माला को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और एक बार तो ऐसे आदमी को हमने देखा झोली माला की, हमको बड़ी खुशी हुई कि भाई बहुत समय से आ रहा है, इसकी झोली उठा ली है। मैंने बोला माला, बोला माला नहीं है, इसके अंदर मोबाइल रखता हूं। माला नहीं रखता हूं, वो फिर भी झोली का भी दूसरा उपयोग कर लेता। अव्ययम अविनाशी है, करने में सुखदायी है। ये भगवान ने महिमा सुना दी अपने ज्ञान को, जो दे रहे हैं उसकी महिमा। शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, एकांत की भक्ति का परिचय दे रहे हैं। अब एक श्लोक पढ़ते हैं, कौन इस भक्ति को लेने का अधिकारी है और कौन नहीं है। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर पूर्णाहुति आज की कथा की। बोलिए, अशर्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। अश्रद्धान, अगर श्रद्धा नहीं है तो इसके लिए एक तो ये भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरा भगवान से सुनना चाहिए, भगवान की वाणी को सुनना चाहिए, और तीसरा श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कहां से उत्पन्न होगी? साधु संग, भक्तों के संग से श्रद्धा उत्पन्न होगी। और ये आयोजन केवल भक्तों का संग देने के लिए किया जा रहा है। आपको यहां भक्तों का संग मिल रहा है, भगवान की कथा मिल रही है, इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अश्रद्धाना पुरुषा, जिसकी श्रद्धा नहीं है ऐसा व्यक्ति धर्म अस्य परं, इस धर्म का, भागवत धर्म का, सुसुखम धर्म का, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म का, पवित्रम धर्म का, जिसकी सारी व्याख्या की है, इस प्रेममय गुह्यतम भागवत धर्म का लाभ नहीं लेगा अगर श्रद्धा नहीं होगी तो। तो हे परंतप, हे अर्जुन, अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। कृष्ण कहता है मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो भगवान आप किससे प्राप्त होते हो? बोला मुझसे प्रेम करने वालों के मैं प्राप्त होता हूं। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति मेरे को जानते हैं, मैं भक्ति से प्राप्त होता हूं। और ये भक्ति का धर्म अगर उन्होंने पालन नहीं किया, इसके ऊपर श्रद्धा नहीं की, तो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमने, वापस इस मृत्यु संसार में आ जाएंगे। तो जो मृत्यु संसार के दुख से बचना चाहता है, उसको यहां इस श्लोक में आवश्यकता बताई गई है, भगवान के वाणी के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, तीसरे अध्याय में आए, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो श्रद्धावान भी है और ईर्ष्यालु नहीं है, उसको मेरा ये मत समझ में आएगा। बोला ये मत किसके लिए है? तब भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम, ये मे मतम इदम मानवा, ये किसके लिए? बोला ये मानव मात्र के लिए है। ये जो अपने आप को मानव कहता है, उस सबके लिए ये मेरा मत है, लेकिन इस मत को, इस मेरे परम धर्म को समझने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय, कृष्णा कर्म कैला सर्व सिद्धि हो। ये विश्वास है कि ये भगवान की वाणी भगवत गीता, इसका अनुसरण करेंगे तो हमारे सारे जीवन का हर काम अपने आप सफल हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, ऐसा विश्वास हो कि भगवान हमारे संग है, नाम जपते हैं तो भगवान हमारे अंग संग है, और जहां भगवान है वहां माया नहीं आ सकती। तो भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। श्रद्धा चाहिए, भक्तों के संग में मिलेगी। सुनना चाहिए, वो भी भक्तों से मिलेगा। और ईर्ष्या रहित होने के लिए भी भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब ईर्ष्या मन से आस्ते आस्ते समाप्त होगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं तो 5 मिनट है आपके लिए, 7 बजे से फिर दूसरे कार्यक्रम शुरू होंगे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा।